ओम शांति। यज्ञ के बहुमूल्य रत्न आदरणीय गीता दीदी जी हम सभी के बीच में हैं। हम सभी एक हाथ की अव्यक्त ताली से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप वह दिव्य रत्न हैं कि जिन्होंने बचपन से ही 14 साल की छोटी सी आयु में बाबा को प्राप्त किया और पढ़ाई चालू ही थी दीदी की, मैट्रिक बोर्ड था उस समय और मैट्रिक के अंदर बोर्ड में समग्र गुजरात में आपने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया और तुरंत ही अपना जीवन बाबा के यज्ञ के अंदर समर्पित कर दिया। इतनी अच्छी सिद्धि हासिल करने के बाद भी आपने यह त्याग का, वैराग्य का और आध्यात्मिकता का समर्पित मार्ग स्वीकार किया। शुरुआत के जीवन में आपने बड़ौदा, अहमदाबाद, भरूच आदि अनेक स्थानों पर गुजरात में अपनी सेवाएं दी। दीदी जी ने गुजराती भाषा में शिविर कराने की शुरुआत की और इस विशेषता के कारण समग्र भारत देश के अनेक राज्यों के अंदर आपको ईश्वरीय सेवा के अर्थ जाना हुआ। आदरणीय गीता दीदी जी ने 79 से लेकर के 92 तक भावनगर, अमरेली और उसके आसपास के अनेक स्थानों में रहकर ईश्वरीय सेवा करके अनेक सेवा केंद्र खोलने का अपना भाग्य जमा किया। 93 से लेकर के 2010 तक आप ज्ञान सरोवर में रहे और वहां का पूरा ही एकोमोडेशन डिपार्टमेंट और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपने मनोहर दादी जी के अंग संग रहकर के संभाला। अभी वर्तमान समय आप शांतिवन में हैं। हर साल कन्याओं की जो ट्रेनिंग होती है, पूरे भारत देश में से अनेक कुमारियां आती हैं, उसका सुचारू संचालन, पूरा मैनेजमेंट आप करते हैं। प्रतिवर्ष लाखों शिविरार्थी भाई बहने शांतिवन में आते हैं, आपका लाभ उन्हों को भी मिलता रहता है। आप बिजनेस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आज हम सभी के बीच में हैं। दीदी का आज का विषय है स्वस्थिति से परिस्थितियों का परिवर्तन। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। प्यारे मधुबन में आप सभी तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर मौका मिला है मधुबन की भूमि में स्व उन्नति करने का। लौकिक दुनिया में ज्ञान में नहीं थे तो जीवन ऐसे ही बीत जाता और लोग अक्सर ये कहते कि जीवन भर समय ही नहीं मिला खुद के लिए। गृहस्थी के 50वें लफड़े होते हैं, उसी में लगे रहे, खुद का कल्याण नहीं किया। ऐसा हरेक आत्मा अंत में महसूस करती है। कहीं इस ब्राह्मण जीवन में ऐसा ना हो कि हम तो सेवा में ही बिजी रहे, खुद के लिए समय नहीं दे पाए। चाहे घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, जिम्मेवारी तो हर एक के ऊपर है ही, और वो संभालनी भी है। उसमें ऐसा ना हो जाए कि हम उसी में रहे और खुद को महसूस हो कि हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये अच्छा मौका है कि ब्राह्मण जीवन को भी रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। शांति से बैठकर स्वयं को देख लेना है कि जिस लक्ष्य से हम बाबा के बने हैं, हमारी शक्तियां, समय, संकल्प, वाणी, कर्म उसी दिशा में लग रहे हैं ना? क्योंकि अल्टीमेट आत्मा के साथ तो स्थिति ही जानी है। संगम युग में जो कुछ हमने किया, कुल मिलाकर उससे स्थिति हमारी जो बनी वो ही लेके हम जाएंगे ना। हम कह सकते हैं कि संगम युग की हमारी अंतिम स्थिति माना लास्ट तक हम जहां भी पहुंच पाएंगे वो ही हमारी सतयुग की आदि स्थिति होंगी। जिस स्थिति से संगम को अंत करेंगे उसी स्थिति से हम सतयुग को शुरू करेंगे। तो नेचुरली वो स्टेज ही भविष्य पद का आधार भी रहेगा। वैसे भी साधना का लक्ष्य आत्मस्थिति ही होता है, आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, ये दो ध्येय बताए जाते हैं साधना के। हमें परमात्मा मिल चुके हैं, क्या साधना करनी है वो बाबा ही सिखा रहा है। हमारी साधना का ध्येय है आत्मशुद्धि और परमात्मा से जो प्राप्तियां होती है उससे भरपूर होना, संपन्न होना। चाहे उसका ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, अलौकिक अनुभूतियां हैं, उससे भरपूर होना। और ये भी हम जानते हैं कि सारा चक्र तो हम स्थिति खर्च ही करेंगे। हमारी स्थिति खर्च ही होती जाएगी, जमा तो कुछ होना ही नहीं है। सिर्फ संगम युग में ही स्थिति बनाने का मौका है। एक तो पॉजिटिवली, पहली बात तो यही मैं बताऊंगी कि सिर्फ परिस्थितियां आए और उनको बदलने के लिए मुझे स्थिति बनानी है, ऐसा नहीं है। वो तो एक फायदा है स्वस्थ स्थिति बनाने का कि स्थिति शक्तिशाली है, शुद्ध है और श्रेष्ठ है, तो अपने आप परिस्थिति तो पार सहज हो जाएगी। ज्ञान के हिसाब से भी परिस्थिति परिवर्तनशील है, आज नहीं कल वो तो जानी ही है, पर वो शांति से, खुशी से, शक्ति से पार हो जाए, वो स्वस्थिति का फायदा है। स्वस्थिति से वो फायदा होता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, फिर वो शारीरिक बीमारियां हैं, आर्थिक मुसीबतें हैं या संबंधों के हिसाब किताब है या प्रकृति के हिसाब किताब है या अलौकिक परिवार में आने वाली बातें हैं या खुद के कर्मों से खुद को आने वाली परिस्थिति है, वो कोई भी हो, हमारी स्थिति ज्ञानयुक्त है, बाबा साथी है, श्रीमत की धारणा है, सेवा का जमा पासा साइड है, तो नेचुरली इन बातों को पार करने में सहज रहता है। पर मूल चीज हमारा आध्यात्मिक बनने का लक्ष्य ही पॉजिटिवली स्थिति को श्रेष्ठ बनाना। बातें आए या ना आए, जैसे जीवन में अनुभव होगा कि भाई मेरे जीवन में इतने साल तो मैं एकदम उड़ती कला में रहा है, ना होता है ना कईयों को कि मुझे जीवन में कोई बातें आई ही नहीं, इसलिए बातें हो या ना हो, पर हम ज्ञान और योग में क्यों आए हैं, क्यों हमने ये साधना का मार्ग अपनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं पूर्ण शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा बन जाऊं। जैसे भक्ति में भी आप देखिए कि जो बाबा कहते हैं ना अव्यभिचारी भक्ति वाले भक्त जो हैं, या पुराने पहले के जो भक्त लोग हैं, वो भक्ति ईश्वर प्रेम के कारण करते हैं, आत्मकल्याण के लिए करते थे। ये तो आजकल अल्पकाल की इच्छाओं के लिए करने में करते हुए देखने में आते हैं। आजकल कोई न कोई इच्छा प्राप्ति, मनोकामना, कोई मन्नत, उसके लिए भक्ति करते हुए दिख रहे। लेकिन द्वापर की आदि से, मैं कहूंगी कलयुग के मध्य तक भी, मैंने आज से 100-200 वर्ष पूर्व के भी भक्त लोग मैंने ईश्वर प्यार के कारण याद करते थे भगवान। आत्मशुद्धि के लिए करते, क्योंकि आत्मा का सही परिचय नहीं था, परमात्मा का सही परिचय नहीं था, तो विकारों से मुक्त नहीं हो पाते थे। पर दिल से विकारों से छूटना चाहते, इसलिए उसी ध्येय से भक्ति की। चाहे जंगलों में गए, गुफाओं में गए, इतना देह दमन किया, कष्ट, कोई अल्पकाल की प्राप्ति इच्छाएं नहीं थी, उनको तो दैहिक सांसारिक विषयी बंधनों से मुक्त होना था। तो हम बाबा के बच्चे भी अल्पकाल की प्राप्ति और इच्छाओं के लिए, उनकी पूर्ति के लिए कोई योग और पुरुषार्थ नहीं करते। आजकल करने लगे हैं, योग के प्रयोग का नाम देते हैं, पर वो अल्पकाल की इच्छाओं के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा कि बीज को पकड़ने से अपने आप सब कुछ हो जाता है ना, एक एक डाली को काटने नहीं बैठ, एक परिस्थिति आई योग लगाने बैठ गए। हमारी तो सदा बाबा से लगन रहनी चाहिए। मुसीबत आवे तब योग करना है क्या? हमारी तो लगन ही बाबा से है, हमें और इच्छाएं है ही नहीं। अब हमारे इस पवित्र ज्ञानी योगी जीवन का लक्ष्य ही ये है कि हम तो उस एक की याद में मगन हो जाना चाहते। बाकी तो सत्य ज्ञान की शक्ति ही इतनी बड़ी है कि जब ज्ञान को हम समझ लेते हैं और उस अनुसार चलने लगते हैं, जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, आदि परिस्थितियां तो अपने आप ही खत्म हो जाती, ज्ञान में आने मात्र से खत्म हो जाती। है कि नहीं ऐसा? ज्ञान में आने मात्र से बातें खत्म हुई, क्योंकि परिस्थितियां, समस्याएं, मुसीबतें तो इसलिए थी ना कि सही समझ नहीं थी। सही दृष्टिकोण नहीं था तो बातें भारी लगती थी। भाई कोई ने कुछ बोल दिया तो फीलिंग आ जाती थी, मूड ऑफ हो जाता था। अब कुछ भी नहीं होता है क्योंकि समझ है ना, रोज का अभ्यास है, हम अपने स्वमान में हैं, तो किसी की ऐसी वैसी बोली हुई बात से फीलिंग नहीं आती। तो बाबा के सत्य ज्ञान को पाने से आधी परिस्थितियां तो अपने आप खत्म हो गई। हम एक दो को समझ पाते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं, और फिर नित्य अभ्यास करते जाते हैं, अध्ययन करते जाते हैं, रोज बाबा की मुरली हरेक सुनते हैं, मैजोरिटी पढ़ते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं। ये तो हमारा रूटीन पुरुषार्थ है। रोज बाबा की याद में बैठते हैं तो जैसे जैसे हमारा अध्ययन और अभ्यास बढ़ता जाता है और गहराई आती है और सूक्ष्म समझ आती और स्थिति बनती है और शक्ति भरती है, तो छोटी मोटी और बातें भी असर नहीं करती। और हम समझ चुके हैं, देखो आज की मुरली आप सबने सुनी है, बाबा ने कहा ना, हिसाब किताब की कितनी भी शाखाएं हो, कितनी बातें बाबा ने बताई, पर सब समाप्त करने की एक ही विधि कौन सी? लगन में मगन, लगन में मगन, वही बिंदु बनना। मगन हो जाना, तो हम समझ गए हैं ना कि हमारी स्थिति जितनी रूहानी दिव्य योगियुक्त वो ही हर बात का रामबाण इलाज है। ठीक है, प्रैक्टिकल जीवन के हिसाब से और प्रयास हम करते हैं। मेरे सामने कोई परिस्थिति आई, मान लो मुझे कोई बीमारी आ गई, तो शरीर के हिसाब से जो मैं कर सकती हूँ वो दवाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, वो मुझे करना है। पर मैं जानती हूं कि स्थिति जितनी अच्छी होगी, बीमारी को ठीक होने में भी उससे ही मदद मिलेगी। अक्सर डॉक्टर कहते हैं दादियों के लिए कि इनके जैसे पॉजिटिवली कोऑपरेटिव पेशेंट्स और कोई हमें दिखते नहीं, माना कभी उसका कोई विरोध ही नहीं। हम कहेंगे यहां सुई डालनी है, भले डालो। माना डॉक्टर ट्रीट करें, पर अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आता। अब वो कोऑपरेटिव तो तब बनेगा ना जब मेरे में अंदर में हिम्मत है, धीरज है, शांति है, शक्ति है, तभी तो हम कोऑपरेटिव पेशेंट बन सकेंगे। अच्छा, बाबा ने हमें सिखाया है कि भाई जो कुछ खाते हो पीते हो बाबा को याद करके खाओ, तो उसमें दवाई भी तो आती है कि भाई दवाई भी जब खाते हो तो बाबा के प्यार में खाओ, कोई क्रीम लगाते हो तो भी बाबा की याद में प्यार से लगाओ, दवाई लगाते उसमें भी तो योग काम करता है। पर वो स्थिति है तो मैं कर सकूंगी। मुझे मेरे सत्कर्म में विश्वास होना चाहिए कि मैं श्रीमत पर चल रही हूं और हर कर्म कर रही हूं, मेरा बुरा हो नहीं सकता है। हाँ, बनाए हुए हिसाब के कारण बातें आएंगी मेरे सामने, पर मेरा वर्तमान मैंने सुधार दिया है श्रीमत पर, तो मेरे में हिम्मत रहेगी, धीरज रहेगी और वो हिसाब चुकाने में स्थिति की मदद रहेगी। वे आर्थिक परिस्थिति है, हम जानते ही हैं, संसार चक्रांत के समय में पहुंचा है, तो हलचल तो हर क्षेत्र में आनी है, फिर वो इकोनॉमी है तो उसमें भी आनी है। सिर्फ मेरे सामने आई है ऐसा तो है नहीं, है ना? अनेकों के सामने आर्थिक मुसीबतें तो आती ही हैं। बाबा के ज्ञान से तो फायदा है, जीवन सादा हो गया, इच्छाएं कम हो गई, खर्चे कम हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि और कोई इच्छाएं नहीं है, कोई शौक नहीं है, तो अपने आप हमारी इकोनॉमी तो इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, उसमें से भी हम बाबा के भी मददगार बनते हैं, चाहे जितना भी हम मदद कर सकते हैं, तो बाबा भी तो कहता है ना, अभी दो चार दिन पहले ही मुरली में था ना, कि जो बाबा के मददगार बच्चे हैं अंत के समय बाबा उसको सहायता देते। कर्म ठीक हो रहे हैं, भाग्य ठीक हो रहा है, तो हिम्मत रहती है ना, धीरज रहती है। और जो गुण बाबा ने दिए हैं, अगर नौकरी धंधा भी उसमें भी क्वालिटी काम करेंगे तो अच्छे लोगों की तो आज सब जगह जरूरत है। कहते हैं ना भाई, एम्प्लॉइज मिलते हैं पर काम नहीं करते। बाबा के बच्चे दिल से कार्य करते हैं तो सिर्फ सेवा ही दिल से करेंगे या जहां नौकरी धंधा करते हैं वो भी दिल से करेंगे? गुण तो सदा रहता है ना, कि चार काम में गुण रहेगा और चार में नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? अपनी अच्छे गुणों से ही तो लोगों को हम पसंद आते हैं। कि भाई ब्रह्मा कुमारी में जैसे सेवाधारी हैं, कार्य करता है, ऐसे और कोई संस्था में नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करना है तो गवर्नमेंट या कंपनीज कहती है ना भाई, ब्रह्मा कुमारी इसको साथ लेके काम करो, उनके सेवाधारी बहुत अच्छे। क्योंकि हम अच्छे हैं ना, तो हमारा हर कार्य अच्छा है, फिर वो नौकरी का है, घर का है या सेवा का है। तो अपने आप काम भी मिलेंगे। हिसाब किताब से बात आएंगी पर निश्चय ना हिले, श्रीमत में विश्वास रहे, धारणाएं यथावत रखें, तो पहले से और अच्छा चांस मिलता है। हमारे लिए द्वार बंद नहीं हो जाते और अनेक द्वार खुल जाते हैं। और हम ज्ञान पढ़ते हैं, रोज बाबा हमें समझाते हैं, तो हमारा लक्ष्य रहता है ना कि मुझे अपने तरफ से, अपने कारण से कोई समस्या उत्पन्न नहीं करनी है। माना हमें अपने स्वभाव संस्कार इतने अच्छे रखने हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का कारण नहीं बनना है। तो हमारे तरफ से तो कोई कलह क्लेश होगा ही नहीं ना। अच्छा, कोई सामने से आके टकराता है, वो अपने संस्कारों से ठीक नहीं चलते हैं, पर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे हिसाब क्लियर हो जाता है। ठीक है, हम न्यारे रहेंगे, एक चांस जाने देंगे, कोई बात नहीं। बाबा ने बहुत विधि बताई है सेवा करने की। माना परिस्थितियां स्वस्थिति से हम बदले वो ठीक है, पर हमारा पहला पुरुषार्थ ये हो कि परिस्थितियां क्रिएट ही ना हो। हम खुद कारण न बने। कई बार हमारा बोलने का चलने का तरीका ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कहीं ऐसे चलते हैं कि दो चार चीज को तो ठोकर मार ही देंगे, क्योंकि चाल ही ऐसे तो जीवन में सबके साथ चलना है। समर्पण होने के बाद भी सबके साथ चलना है। हम जब समर्पित हुए तो हमको शुरू में यही इच्छा थी और हमने दादी को कहा कि दादी आप है ना यीशु दादी की तरह मेरे को कोई ड्यूटी दो, क्योंकि मैं देखती थी यीशु दादी हमेशा अकेली अपने आप सब कुछ करती रहती, तो मुझे भी बहुत संगठन नहीं, अपना अकेला एकांत एक्यूरेट काम करते रहो और कार्य में अपने आप में चिंतन में पढ़ाई में ही बहुत आनंद आता है, पर टोटल बिल्कुल उससे विपरीत ही मुझे मिला। हम समर्पण हुए और पहले साल से ही बेहद की सेवा में आने का पार्ट मेरा शुरू हो गया। पर मुझे क्योंकि लक्ष्य अपने आप में मस्त रहना, अपनी पढ़ाई में मस्त रहना, तो बेहद के संगठन में जाना रहना सेवा करना यही रोल मिला, पर हमको मुश्किल नहीं लगा। माना जिन चीजों से हम भागना चाहते हैं वो जरूर सामने आएगी। कहीं कहते हैं ना कि दुनिया में ये सारी बातें पसंद नहीं थी इसलिए हम बाबा के बने, यहाँ आके भी वही बातें आई। क्योंकि हम भागे ना उन चीजों से, वो कमजोरी जो है तो वो बात तो सामने लाएगी ना, इसलिए हमने एक बात पक्का कर लिया कि परिस्थिति से भागना नहीं है पर अपने आप में शक्ति भरना है। भाई कोई इंसल्ट ना कर दे, कोई बिगर मतलब ईर्ष्या द्वेष ना करे, अपन ना करे, पर अपनी कईयों को होती है ना, तो हम सोचते हैं कि अपना अकेले अकेले अच्छी रीति से काम करते रहे, पर बातें हों और विजयी बने तब तो शक्तिशाली कहे जाएंगे। अच्छा, पहली परिस्थितियां भारी लगती थी ज्ञान से पहले, क्योंकि हम समझते थे ना, रॉन्ग समझते थे कि उसके कारण परिस्थिति आई, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही, ये मेरी ईर्ष्या कर रही, ये मुझे मौका नहीं दे रही, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम दूसरों को कारण समझते थे ना, तो हम और भारी होते थे, टेंस होते थे। अब कोई भी बात आती है तो सबसे पहले बुद्धि में क्या आता है कि हमारे अपने हिसाब बनाए हुए हैं। तब तो हमारे साथ ये बात आई, बिना हिसाब के तो कोई बात आ ही नहीं सकती। बिना हिसाब किताब मैंने देखा, बिना हिसाब किताब के भूत भी परेशान नहीं करता है। वो हिसाब किताब से ही परेशान करता है। माना पहले दूसरों के लिए ही दोषित बुद्धि में आता था ना, कि इसके कारण बात आई नहीं और हम सोचने लगते थे ये इसी का काम है। मुझे पता है ना, उसने ही मेरा रिपोर्ट किया होगा, उसने ही ये किया। हम दूसरे को ही दोषित करते रहते। माना हम कारण ढूंढते थे, निवारण पर फोकस नहीं था। कहते हैं भी किसने कह दिया, किसने कंप्लेन कर दी। माना मेरी भूल हुई इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर मेरी भूल बता किसने दी, हम उसको ढूंढते। माना गलत करने का दुख नहीं है, पर मेरा फूट क्यों गया, बड़ों को पता क्यों चल गया, उसका हमें मुसीबत है। अब बाबा के बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद दृष्टिकोण ही बदल गया हमारा। बिना कर्मी के काउंट के मेरे सामने परिस्थितियां नहीं सकती। अब वो हिसाब तो चुकाना ही होता है। बाबा कहते हैं ना, जो हिसाब बना है वो कोई माफ नहीं कर सकता है, वो चुकाना ही होता है। तो वो मुझे कैसे चुकाना है? अच्छी स्थिति से रो धो के चुकाना है या शांति और धीरज से चुकाना है? रिएक्ट करके हिसाब और बढ़ाना है या फुल स्टॉप देना? वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों चला? कई बार हम कहते हैं वो मेरे साथ ही ऐसा करता है, दूसरे का सब काम करता है, मैं कैसा हूं तो नहीं करता। ऐसे होता है ना अनुभव, घर में भी होता है। पर हमारा प्रश्न ही हमारा जवाब है कि मेरा क्यों नहीं मानता है वो। सोचो, अच्छा वो खराब होता तो किसी का नहीं मानता ना, पर वो तो इसका मान रहा है, मेरा ही नहीं मान रहा है ना। माना मेरा उनके साथ हिसाब ठीक नहीं है, तो मुझे ठीक करना है ना, शांति से, योग से, धीरज से, शुभ भावना से। वही बाबा सिखाते हैं। माना ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक, समझ तक नहीं रखना है, मुझे अप्लाई करना है जीवन, प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसका उपयोग करना है ना। वरना ज्ञान कहाँ यूज करना है बताइए? आपको सब प्यार करते हो, सब सहयोग देते हो, किसी के तरफ से कोई बात ना हो तो ज्ञान का उपयोग कहाँ है? ज्ञान तो है ही इसलिए ना कि जब विपरीत बातें हैं, जिसको हम परिस्थिति कहते, प्रतिकूल बातें हैं, तभी तो हमें धारण करना है। तो सबसे पहले जब भी कोई बात आती है तो मुझे पहले बाबा और बाबा का ज्ञान याद आना चाहिए कि इस परिस्थिति के लिए बाबा की श्रीमत क्या है, मुझे क्या करना है। बस मुझे वो श्रीमत को धारण कर उसका जवाब देना। माना ज्ञान सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, परिवार में भी धारण करना है, नौकरी धंधे में भी धारण करना है, सेवा में भी धारण करना है। ऐसा नहीं है कि भाई नौकरी धंधे में ज्ञान की बात नहीं करो, ज्ञान टोटल लाइफ के लिए। और ये आप सबका भी अनुभव होगा, जो बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हैं उनका अनुभव है। कि बाबा के ज्ञान को धारण कर हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, इससे और सफलता मिलती, हम आगे बढ़ते। पहले बात आती है, पर जब हमारी दृढ़ता का परिचय हो जाता है फिर लोग विरोध नहीं करेंगे, फिर आपको एप्रिशिएट करेंगे, फिर वो आपको वैल्यू करेंगे कि हमारे बीच में ये एक हीरा है, ये एक सच्चा व्यक्ति है, वो आपसे राय लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे। और यही समय है स्थिति बनाने का। रोज जो मुरली सुन रहे हैं वो अवस्था बनाने के लिए ही तो है। अवस्था माना आत्मस्थिति, ऊंची शक्तिशाली दिव्य स्थिति बनाने के लिए। ज्ञान का अच्छा अध्ययन चाहिए, हमारी मन मत की या ज्ञान से पहले की जो हमारी बिलीफ सिस्टम है वो टोटल चेंज होनी चाहिए। कई बार कहते हैं कि बाबा तो कहता है पर करके अपनी मत चला लेते हैं ना हम, दुनिया में ऐसा नहीं चल सकता है, बाबा तो कहते हैं पर, माना हम टोटल बाबा को स्वीकार नहीं कर रहे ना, इसलिए अपनी बिलीफ्स जो भी हमारी मान्यताएं हैं उनको करेक्ट करना है, तभी आपको आप दृढ़ता से अप्लाई करेंगे और तब बाबा के ज्ञान की शक्ति प्राप्त मदद का अनुभव होगा। रोज अभ्यास, क्यों रोज आत्मभिमानी बनकर मुरली सुनना, पढ़ना, लिखना, रिवाइज करना, ये जरूरी। और ज्यादा पुरुषार्थ न करे, ये हमारा रूटीन पुरुषार्थ है, वो हमें करना ही है। रोज बाबा की याद में बैठते हैं, स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, यही चीजें तो अवस्था बनाती है। अगर आपकी दिनचर्या ठीक है तो अपने आप लाइफ ठीक है। और नित्य अभ्यास से ही तो स्वरूप बनता है। बाबा कहते हैं ना, समुद्र की लहरें टकराती टकरा के वो नुकीले पहाड़ भी घिस जाते, वो टेढ़े मेढ़े पत्थर भी घिस जाते हैं और गोल बन जाते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं। रोज अभ्यास, इससे स्थिति और स्वरूप बनता है। बड़ों का संग, आपस में ही एक दो की मत पर न चले, जो हमारे निमित्त है, बड़े हैं, सीनियर है, क्लास में भी होते हैं ना ऐसे भाई बहन, परख तो सकते हो ना कौन महारथी है। बड़ों का संग हमें और आगे बढ़ाता है, इससे और हमारी स्थिति में गहराई, सूक्ष्मता, अटेंशन आता है। ये चीजें स्थिति को बनाती है। और एक लंबे समय तक, माना जीवन भर, ज्ञान मुझे जीना है। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं, सांसें हैं, मुझे ज्ञान जीना है। स्थिति इससे बनती, फिर आप अचल अडोल बातें आएंगी जाएंगी। हम उनके हो चुके हैं जो कल्याणकारी, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिकर नहीं होगा। हमें तो हिम्मत, धीरज, योग, शांति से अपने आप रास्ता क्लियर होता जाता है। और बाबा ने कहा है कि सेवा बाकी रह जाएगी तो बाबा किसी के द्वारा भी कराएगा, पर स्थिति तो खुद को ही बनानी होगी, वो तो खुद को ही बनानी होगी। और उसका ये अच्छा चांस है। साइलेंस में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, बाबा को सामने रखकर खुद को देखेंगे, तो अपने आप पता चलता है ना कि मुझे कहां अपने आप को ठीक करना है, मजबूत करना है। ओम शांति।
ओम शांति। किस प्रकार स्वस्थिति से जीवन में आने वाली परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करें, उसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल विधियां आज जो हमने सुनी है वो सारी है प्रैक्टिकल विधियां, आदरणीय गीता दीदी जी ने बताई। हम सभी इन्हीं विधियों को व्यवहार में लाकर, स्वरूप में लाकर, हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी अवस्था को जो बाबा चाहते हैं, जो हम स्वयं चाहते हैं, ऐसी बनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। लास्ट में दीदी जी ने बहुत अच्छी बात एक बताई है कि सेवा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये महावाक्य, सेवा तो बाबा अंत में कोई से भी करा देगा, लेकिन स्थिति वो तो हमें ही बनानी होगी। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।